ओम शांति, ओम शांति। आपके ये प्रातःकालीन सत्र इस विद्यालय की जो मुख्य शिक्षा है सहज राजयोग, उसके अभ्यास और अनुभव से संबंधित रहेंगे। राजयोग या योग शब्द जब हम कहते हैं तो योग से हम परिचित हैं। आज ये शब्द बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते रहे और इस योग के लाभ भी अपने जीवन में वो अनुभव करते थे। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो राजयोग अभ्यास से जो लाभ होते हैं, शांति, मन की शांति का अनुभव, मन की एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मनोबल मजबूत होता है, हमें एक अतींद्रिय आनंद की अनुभूति होती है, व्यवहार परिवर्तन होने लगता है और उससे हमारे संबंध बेहतर हो जाते हैं, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और निर्णय करने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है और ओवरऑल हमारा पूरा सिस्टम रिलैक्स होता है और इसीलिए हम तनाव मुक्त होते हैं जब हम योग का अभ्यास करते हैं। तो आज वर्तमान में विशेष स्वास्थ्य के संदर्भ में ही योग लोकप्रिय हैं और आज पूरे विश्व ने योग को स्वीकार किया। 21 जून हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी रिक्वेस्ट से यूनाइटेड नेशंस ने योग दिवस घोषित किया और आज विश्व के अनेक देश 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन राजयोग आसन प्राणायाम नहीं है। राजयोग जैसे पतंजलि योग भी अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, उसमें से सिर्फ आसन प्राणायाम जो बहुत सहज है वो कर लिया जाता है और वो एक व्यायाम के रूप में स्वस्थ रहने के लिए हम अभ्यास करते हैं। लेकिन वास्तव में राजयोग ध्यान, धारणा, समाधि के स्तर का योग है और ये पहले हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। आज 70-80% बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं जो टेंशन, भय, चिंता के कारण होती हैं। पहले कहते थे अ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अब कहते हैं हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए तो हमारा माइंड पहले हेल्दी होना चाहिए। तो राजयोग हमारे मन को स्वस्थ बनाता है और फिर हमारा तन भी स्वस्थ होता है। तो अनेक वैज्ञानिक अध्ययन इस पर हुए हैं और उनसे ये सिद्ध हुआ है कि जब हम योग अभ्यास निरंतर करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन्स बनते हैं और ये हार्मोन्स, ये रसायन हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो भी शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, वो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए तनाव रोग उत्पन्न करता है। लेकिन योग से हम इन रसायनों के कारण स्वस्थ होते हैं, उससे हमारी हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है। तो ये सब लाभ हमें योग से मिलते हैं। योग शब्द संस्कृत के युच धातु से आया है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसीलिए आध्यात्मिक भाषा अधिकतर संस्कृत ही है। तो युच का अर्थ होता है संस्कृत में संबंध या मिलन। योग को वैसे भी हिंदी में जोड़ना कहते हैं, अंक गणित में योग माना जोड़ना, तो जोड़ माना जैसे कहा मिलन, वियोग माना अलग हो जाना, जब हम सहयोग कहते हैं तो दो मिलकर जहां काम करते हैं उसे हम सहयोग कहते हैं। संयोग हम कहते हैं यानी अचानक कोई मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो उसे हम संयोग कहते हैं। तो योग शब्द मिलन के अर्थ में ही प्रयोग होता है। तो ये संबंध है, याद है, यूनियन है, कनेक्शन है, और तीन स्तरों पर योग हो सकता है। तीन स्तरों पर योग हो सकता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। तो भौतिक स्तर पर योग है जब हम दो वस्तुओं को जोड़ते हैं, दो वस्तुओं को मिलाते हैं, जैसे दो तारों को जोड़ना। अगर हमने दूध में चीनी मिलाई तो दूध मीठा होता है, ये भी एक प्रकार का योग है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयों का मिश्रण करके योग बनाते हैं। मानसिक स्तर पर योग हम कहेंगे जब मन कहीं लगा हुआ है। मन व्यक्ति, वस्तु, कर्म में हो सकता है। हम किसी को याद करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा योग है। यदि किसी वस्तु की इच्छा हम करते हैं तो वस्तु के साथ हमारा योग हो जाता है। और कर्म में भी हम अपने मन को अधिक समय तक लगाए हुए होते हैं तब कर्म के साथ हमारा योग है। तो इस स्तर पर हम सभी योगी हैं क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं लगा हुआ होता ही है। लेकिन तीसरा स्तर जो है वो है आध्यात्मिक स्तर। मन जब व्यक्ति, वस्तु, कर्म से निकलकर परमात्मा में लग जाता है, जब ईश्वर में लग जाता है, तब हम उसे राज योग कहते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च शक्ति है। वो सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। यूं तो संसार में भी हमारे संबंध हैं, लेकिन वो संबंध हमारे सर्वश्रेष्ठ नहीं है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति आज हमें प्राप्ति कराता है, जैसे हम कहेंगे कि व्यक्ति की मनस्थिति, परिस्थिति बदल जाती है, तो उस अनुसार इंसान में भी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन परमात्मा तो सदा एक जैसे हैं, उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता। तो इंसान अगर आज हमें सुख देता है तो कल अगर उसकी परिस्थिति बदल जाती है तो वो हमें दुख भी दे सकता है। कोई अगर हमें सम्मान देता है तो वो हमारा कभी अपमान भी कर सकता है। तो लेकिन परमात्मा तो सदा ही शांति का दाता है, सुख का दाता है, प्यार का सागर है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए जब भी हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को ही याद कर रहे होते हैं। इसलिए कहा गया, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। तो हम सभी याद करते हैं परमात्मा को, लेकिन हमारी शिकायत होती है कि मन भगवान में नहीं लगता, मन भटक जाता है। तो क्यों परमात्मा की याद में हमारा मन नहीं लगता? क्योंकि परमात्मा का हमें अज्ञान है। तो राजयोग में हम तीन बातें समझते हैं। पहले साधक कौन है, किसको योग लगाना है। फिर हमारा साध्य कौन है, किसके साथ हमें योग लगाना है। और फिर उसकी साधना यानी विधि क्या है, उसकी पद्धति क्या है कि जिस विधि से हम परमात्मा को याद कर पाएं। तो सबसे पहले तो हमें यही अज्ञान है कि ईश्वर कौन है। और अगर हम परिचित नहीं हैं, आज जो भी परिचय है वो हमें परंपरा से जो चला आ रहा है, जब हमारे पूर्वज करते आए वही हमें ईश्वर का ज्ञान है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है या पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिससे हम परिचित नहीं है उसको हम याद भी नहीं कर सकते। दुनिया में भी जिससे हमारा परिचय होता है उसे ही हम याद कर सकते हैं। और दूसरा, हमें स्वयं का भी अज्ञान है। हम स्वयं के भी सत्य स्वरूप से परिचित नहीं हैं। इसीलिए बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तभी ये बात कही गई अपने आप को जानो। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो वो अंदर थे और उन्होंने बाहर से ही द्वार खटखटाया, तो उन्होंने पूछा कौन है। तो जब विवेकानंद, उस समय विवेकानंद नहीं थे, वो नरेंद्र थे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने जवाब दिया मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तो उनके जवाब से ही गुरु समझ गए कि जिस शिष्य की मुझे तलाश थी वो आज मेरे द्वार पर आ गया है। तो ये समझना कि मेरा सत्य परिचय क्या है। तो क्या जो हम अपने आप को शरीर का नाम रूप कर्म स्थान ये जानते हैं, जो सांसारिक परिचय है हमारा, यही हम हैं या इससे परे भी कोई हमारा अस्तित्व है? सामान्यता कोई हमसे ये सवाल पूछता है कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं, तो हम यही जवाब देते हैं मेरा नाम ये है, हम ये कार्य करते हैं, हम स्थान से आए हैं। लेकिन जब संसार में हमारा जन्म हुआ तब तो हमारा नाम नहीं था, कुछ समय के बाद हमारा नाम रखा जाता है, कुछ लोग तो नाम बदल भी लेते हैं, तो फिर हम कौन थे? व्यवसाय भी काफी सालों के बाद हम शुरू करते हैं, उसके पहले भी तो हम हैं। या जो जन्म स्थान है वो भी लगभग हमेशा बदल ही जाता है। तो ये परिचय हमारा अपूर्ण परिचय है। तो हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते, हम अंतर जगत में भी जीते हैं। और जब हम अपने भीतर जाते हैं तो हैं विचार, भावनाएं, स्मृतियां और वृत्तियां। विचार, भावनाएं, स्मृतियां और वृत्तियां, ये हमारी चेतना है जिसे हम कई नाम देते हैं, आत्मा, रूह, कॉन्शियंस, स्पिरिट, प्राण, सोल। और ये सोर्स ऑफ यूनिक लाइट है, यानी वो हमारे शरीर को जीवन देने वाली शक्ति है जिसे हम आत्मा या रूह कहते हैं। अलग अलग धर्म में उसे अलग अलग नाम दिए गए। और ये सूक्ष्म शक्ति है, हमें दिखाई नहीं देती है, इन स्थूल नेत्रों से हम आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि जो भी संसार में एनर्जी के लेवल पर है वो इनविजिबल है। आज इलेक्ट्रिसिटी से कितने कार्य हो रहे हैं, ट्यूबलाइट से लाइट है, यहाँ कंप्यूटर में हम सारा स्लाइड्स देख रहे हैं, और पंखा चल रहा है उससे हमें हवा मिल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं दिखाई देती। उसके द्वारा जो कार्य संपादित हो रहे हैं वो हम जानते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाए तो हम कितनी भी कोशिश कर लें फैन नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, और भी जो साधन है वो कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आत्मा का अस्तित्व शरीर में है। जब तक आत्मा इस शरीर में है सभी अंग अपना कार्य कर रहे हैं, पूरा सिस्टम संचालित हो रहा है। और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो वही अंग हैं, लेकिन सब अंग काम करना बंद कर देते हैं और फिर हम कहते हैं वो चला गया। तो कौन चला गया? वो तो यही होता है, शरीर तो यही होता है। अगर व्यक्ति केवल शरीर ही है तो कौन चला गया? तब हम कहते हैं कि आत्मा चली गई, और हम उस आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं। तब शरीर छोड़ने के बाद हमें आत्मा याद आती है कि हाँ ये केवल शरीर नहीं था लेकिन आत्मा थी, और उस आत्मा की शांति होनी चाहिए। और शरीर की शांति की तो बात ही नहीं है, शरीर तो शांति है, मरने के बाद शरीर तो शांति हो जाता है। अगर हम कहते हैं रेस्ट इन पीस तो कौन रेस्ट इन पीस करेगा? शरीर तो ऑलरेडी पीस में है ही ना। तो फिर आत्मा की शांति की बात, आत्मा ही इस शरीर को जीवन दे रही। एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं उसको बचाने की और दुर्भाग्य से नहीं बचा पाते। तो अब क्या कहते हैं, पेशेंट को ले जाओ या बॉडी को ले जाओ? क्या कहते हैं? बॉडी को ले जाओ, तो अब पेशेंट क्यों नहीं है? अब वो बॉडी हो गई, क्यों? क्योंकि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। जब जीवित था तो फीलिंग्स थी, इसीलिए उसको पेशेंट कहा गया। लेकिन मरने के बाद मस्तिष्क भी सोचना बंद कर देता है और वो आत्मा कोई अनुभव शरीर के द्वारा नहीं कर पाती। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा मृत व्यक्ति के कुछ ऑर्गन्स जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं, आंखें या हृदय या लिवर, किडनी। तो जिस व्यक्ति में वो लगाए जाते हैं उसमें वो काम करते हैं। एक डेड बॉडी में आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी नहीं देख रही हैं, वो हार्ट पंप नहीं कर रहा है, वो लिवर फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट होता है वो अंग काम करने लगता है, क्योंकि उसमें आत्मा है जो उन अंगों से कार्य कर सकती है, तो वो अंग कार्य करने लगते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल डेथ होने में टाइम लगता है, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ तुरंत हो जाती है, तुरंत हार्ट बीट बंद हो जाती है, सांस आना बंद हो जाता है, लेकिन वो जो टिश्यूज डेथ होती है उसमें कुछ घंटे का समय लगता है, जिसके अंदर ही अंग निकाल लिए जाते हैं और जीवित व्यक्ति को वो प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मानव कहते हैं या मनुष्य कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं, इसका मतलब दो सत्ता है, शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी, यानी प्रकृति के इन पांच तत्वों से हड्डी मांस का बना हुआ ये शरीर, और उसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब ये ह्यूमन बीइंग है। तो आत्मा बीइंग है, कॉन्शियसनेस है, जब चेतना है तब जीवात्मा है वो। तो आत्मा जो है वो नॉन फिजिकल है, जो कहा कि आत्मा जो है वो इनविजिबल है, इम्पेरिशेबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल पावर है, इसीलिए उसको इमोर्टल कहा गया, जिसे गीता में कहा गया नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकहम, जिसे शस्त्र जला नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है। तो गीता में जो पहला अध्याय अर्जुन को सुनाया गया वो आत्मा के विषय में ही, कि इनके और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या जब ये नहीं थे। और आत्मा वस्त्र की तरह इस शरीर को धारण करती है, और जैसे वस्त्र पुराना होता है और हम पुराने वस्त्र छोड़ते हैं नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा ही शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना होता है तो उसको त्याग करके फिर नया वस्त्र लेती है। विज्ञान कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ये सिर्फ परिवर्तन होती है। तो आत्मा एक एनर्जी है, पावर है, इसीलिए ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, लेकिन समय अनुसार आत्मा में जो परिवर्तन आते हैं वो त्रिगुणात्मक यानी सतो रजो तमो में वो परिवर्तन होती है। तो शरीर जो है वो फिजिकल है, मोर्टल है, टेम्पररी है और जड़ है, लेकिन आत्मा जो है वो उसको चेतना प्रदान करने वाली शक्ति है। तो जैसे शरीर के अनेक अंग हैं उसको मिलाकर हम शरीर कहते हैं, केवल हम हार्ट को शरीर नहीं कहते, केवल ब्रेन को शरीर नहीं कहते, या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम शरीर नहीं कहते, सब अंग मिलकर काम कर रहे हैं तो ये बॉडी है। ऐसे ही आत्मा के भी तीन अंग हैं जिनसे मिलकर आत्मा बनी है, मन बुद्धि और संस्कार। और आत्मा एक अति सूक्ष्म चमकते हुए सितारे के समान है, जो आप विजुअल में देख रहे हैं, एक सितारे के समान, जैसे आसमान में सितारा चमकता है लेकिन वो दिखाई देता है, लेकिन आत्मा रूपी सितारा हमें दिखाई नहीं देता, ये इतना टाइनी है कि हमारी आंखों की क्षमता से परे है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारी आंखों की क्षमता से परे हैं। कोरोना वायरस आया है ना, कोरोना वायरस कितना पावरफुल, लेकिन इनविजिबल वायरस है, लेकिन जितना ही वो सटल है, टाइनी है, उतना ही वो जानलेवा वायरस। तो तो दुनिया में हम देखते हैं जो भी एटम्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, सब इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनकी पावर कितनी ज्यादा होती है। तो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही पावरफुल होता है। तो आत्मा भी जितनी सूक्ष्म है, अब उनको यंत्र लगाकर देखते हैं, लेकिन आत्मा को कोई स्थूल यंत्रों से नहीं देखा जाता, आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, साक्षात्कार में आत्मा को देख सकते हैं। हम अपने जीवन में दो शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं, मैं और मेरा। तो मैं शब्द आत्मा का वाचक है और मेरा शब्द शरीर का वाचक है। जैसे जो भी चीज हम प्रयोग करते हैं उसके लिए हम मेरा कहते हैं। अगर किसी घर में हम रहते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन पता है कि मैं घर नहीं हूं। या मेरा चश्मा है, मेरी घड़ी है, पर मैं चश्मा और मैं घड़ी नहीं हूं। ऐसे ही हम शरीर के लिए कहते हैं मेरा शरीर है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा है या मेरा पेट दर्द हो रहा है या जो भी है। तो वो मेरा शब्द का प्रयोग, यानी मैं पेट नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और मैं मुझ आत्मा ने इस शरीर रूपी माध्यम को धारण किया हुआ है। इसे धारण करके मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करती हूं जो मेरी है। ये मेरी आंख है, मेरा कान, मेरा मुख, जिनके द्वारा मैं कर्म करती हूं। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये जो आत्मा की तीन शक्तियां हैं, उसमें मन विचार शक्ति है, अनुभव शक्ति है, कल्पना शक्ति है और जो आइडियाज बनाने के लिए हमें मदद करती है, ये हमारी मन की शक्ति है। और मन की शक्ति के लिए हम कहेंगे ये सबसे सूक्ष्म है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार भी सूक्ष्म है। इसलिए हम अपने मन को देखते नहीं है। किसी ने अपने मन को देखा है क्या कहेंगे? लेकिन 24 घंटे हमारा मन काम कर रहा है। कभी भी हम विचारों से फुर्सत में नहीं होते। काम से हम फुर्सत में हो सकते हैं, लेकिन मन से हम कभी भी फुर्सत में नहीं होते। और मन तो चलता ही रहता है। तो मन की गति इतनी अधिक है कि प्रकाश की गति से भी तेज गति वाला हमारा मन है। एक सेकंड में हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हम शरीर से कहीं बैठे हो सकते हैं, जैसे शरीर से भी हम हॉल में बैठे हैं, लेकिन मन से हो सकता है कि हम हॉल से बाहर गए हों, जहां जिस स्थान से हम आए हैं वहां पर हमारा मन चला गया हो, या किसी मित्र की हमें याद आई तो हमारा मन उसकी याद में चला गया। तो मन जाता है और आता है। एक ही विषय पर पूरी तरह से मन एकाग्र नहीं होता। तो इसीलिए कहा एक सेकंड में अमेरिका भी जा सकता है, एक सेकंड में मन लंदन भी जा सकता है। तो ये मन की गति है। और इसीलिए कहते हैं प्रति मिनट हम 25 से 30 विचार करते हैं और सारे दिन में करीब 30,000 से 50,000 विचार हम करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो मन की गति बढ़ जाती है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो मन की गति बहुत कम होती है और उस समय मन शक्तिशाली होता है। हमारे विचारों के लिए कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। हम वही हैं जो हमारे विचार हैं। हमारे विचार ही हमारा जीवन निर्माण करते हैं, क्योंकि हर कर्म का बीज एक विचार ही होता है। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन उसके विचार जिस दिशा में चलते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता जाता है। अगर आज हम सफल हैं तो कहीं पहले हमारे विचार सफलता के हैं, और अगर कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो कहीं पहले उसके विचार बुरे हैं, तभी वो कर्म में आते हैं। तो मन की एकाग्रता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर मन एकाग्र सहज हो जाता है तो इंसान लक्ष्य को हासिल कर लेता है, लगन से वो अपने कार्य को अंजाम दे पाते हैं। लेकिन अगर मन एकाग्र नहीं होता है तो व्यक्ति लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। तो पहले हम मन को समझते हैं। आत्मा की, मन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन सबसे कम समझी गई शक्ति है, ऐसा हम कहेंगे। तो सामान्यतः पूरी दिनचर्या में हम चार प्रकार से सोचते हैं, आवश्यक विचार, फालतू विचार, नेगेटिव बुरे विचार, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, ये भी हम करते हैं। 70% विचार हमारे आवश्यक विचार होते हैं। जो भी कार्य हमें करना है, दिन भर में हम सब कोई ना कोई कार्य करते हैं, तो पहले हम उसका प्लानिंग करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या कार्य करना है, क्या निपटाना है, ये सब। दूसरे प्रकार के विचार होते हैं फालतू विचार, यानी जब हम काम नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमारा मन फुर्सत में नहीं होता, जैसे कहा, तब हम क्या सोचते हैं, बीती हुई बातें, ये हुआ, ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, जो बीता हुआ कल है उसको अगर हम बार बार सोच रहे हैं तो हमारे वर्तमान में भी हम उस दुख को अनुभव करते हैं। ज्यादातर जो बातें हमें हर्ट करती हैं वो हम ज्यादा सोचते हैं। हालांकि सभी प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, खुशी की भी होती हैं, लेकिन ज्यादा इंसान कौन सा सोचता है, जिससे वो हर्ट हुआ होता है। इसलिए कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो हो गया वो हो गया, वो लौट कर तो आने वाला नहीं है। उससे अगर जो हमें सीखना है वो सीख कर हम उसे यूज करें। कुछ लोग भविष्य की चिंता में रहते हैं, ये देखा गया स्टडीज में कि 15% लोग भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य की योजना बनाना अलग बात है, लेकिन चिंता करना क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, वो भी वेस्ट थॉट है, क्योंकि उसमें भी हमारा समय और शक्ति जाती है, क्योंकि भविष्य तो वर्तमान पर निर्भर होता है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट, इसीलिए उसको प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट हमारे लिए गिफ्ट की तरह है, और यही जीवन जीने की कला है कि हम वर्तमान में जिए। तो राजयोग हमें वर्तमान में जीवन जीने की कला सिखाता है। नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार भी दिन भर में कई बार हमारे मन में आ जाते हैं, परिस्थितियों व्यक्तियों के अनुसार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर भाव टेंशन भय, ये सब मन की नकारात्मक स्थितियां हैं। और जब इनके वश होकर हम सोचते हैं, हालांकि बहुत अधिक बुरे विचार हम नहीं करते, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, ये जैसे विष की तरह काम करते हैं। किसी भी चीज में अगर विष की एक बूंद भी पड़ जाए तो वो पूरी चीज रुइन हो जाती है। किसी की मृत्यु के लिए भी अधिक विष की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी मात्रा में ही विष अपना काम कर लेता है। तो ऐसे ही बुरे विचार मानो क्रोध है, जो एक बहुत कॉमन नेगेटिव इमोशन है। कोई भी कारण से हम गुस्से में आते हैं, मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या किसी ने गलती की, या किसी ने झूठ बोला, हमारा अपमान किया। ज्यादा समय नहीं होता है, वो 5 मिनट का ही गुस्सा होगा, लेकिन उस 5 मिनट में हम ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जो हमें नहीं कहने चाहिए, जो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भरता है लेकिन जबान का घाव नहीं भर पाता। उसका असर हमारे संबंधों पर आ जाता है, तो संबंधों में प्रेम खत्म होने लगता है, कई बार संबंध टूट भी जाते हैं उसके कारण। तो 5 मिनट में कहे गए शब्द हमारे सारे जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। और गुस्से के बाद यदि हम कोई काम करना चाहें, बुद्धि का काम, तो मन अशांत हो जाता है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। 5-6 घंटे तक उसका असर हमारे मन बुद्धि पर रहता है। तो ये तो एक क्रोध की बात। कोई भी नेगेटिविटी जब आती है तो वो हमें टेंशन ही पैदा करती है, दुख अशांति ही पैदा करती है, और यही हमारे लिए साइकोसोमैटिक बीमारियों का कारण भी है। क्योंकि आज की जीवन शैली में हम बार बार नेगेटिव साइड में आसानी से चले जाते हैं, और अपने आप को पॉजिटिव करना हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल होता है। पॉजिटिव थॉट्स भी हम करते हैं, अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचार, लेकिन करना चाहते हुए भी हम अधिक नहीं कर पाते, ये भी बहुत कम होते हैं लेकिन शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि आज मीडिया का जमाना है और हमारी दिनचर्या की शुरुआत कैसी होती है, सवेरे सवेरे न्यूज से, समाचारों से, किसी भी विधि से अगर हम समाचार देख सुन रहे हैं तो दुनिया की सबसे बुरी खबरें मीडिया की सबसे अच्छी खबरें होती हैं। और सुबह सुबह जब हमारा मन शांत है, जब हम सोकर उठे हैं और उस समय हम ऐसी खबरें देखते सुनते हैं तो हमारे मन पर क्या असर आता है? निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन पर पड़ेगा। हम अगर चर्चा भी करेंगे तो फिर उन्हीं की चर्चा करेंगे कि दुनिया में क्या कैसे हो रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पुराने जमाने में लोग अपना दिन समाचारों से नहीं शुरू करते थे, अपना दिन भगवान के ध्यान से या भगवान के भजन से, भक्ति से शुरू करते थे, तो मन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता था। तो फिर हमारी सहन शक्ति, धैर्य की शक्ति, शांति की शक्ति बढ़ जाती है। वो एक इस तरह से काम करता है जैसे कि कंडीशनिंग हो गई। ये हॉल एयर कंडीशन है तो बाहर कितनी भी गर्मी है हॉल पर असर नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब मन शांत है, मन शक्तिशाली है, तो बाहर की परिस्थितियां कितना भी मुझे हलचल में लाने वाली हैं लेकिन मेरे मन पर उसका इतना जल्दी प्रभाव नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा कि वो सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव होना तो हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, उसके लिए हमें अपने मन को अभ्यास देना होगा, क्योंकि मन तो सूक्ष्म है। आज इस हाथ को ऊपर करना है, नीचे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, ये आसान है क्योंकि ये तो फिजिकल है, लेकिन सूक्ष्म मन को सही दिशा देना या सकारात्मक दिशा देना, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो प्रतिदिन जो अभ्यास करते हैं वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में ही मन को हम कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। तो दुनिया में भी हम देखते हैं, अगर कोई किसी क्षेत्र में कुशलता हासिल करना चाहते हैं, निपुण होना चाहते हैं, तो इतना जल्दी नहीं हो जाते, उसके पीछे भी अभ्यास होता है, उसके पीछे भी वर्षों की मेहनत होती है, तब जाकर के वो योग्यता हासिल होती है। तो यहां भी मन को, यदि इसको हम कहते हैं कला, कला माना विशेषता, वो तब आती है जब उसके पीछे वो अभ्यास होता है हमारा। तो राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन हम करते हैं तो मन सकारात्मक होता है। आत्मा की दूसरी शक्ति बुद्धि की शक्ति है। बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, समझ शक्ति है, तर्क शक्ति है, विश्लेषण करने की शक्ति है। हम कई बार मन से कई तरह के विचार करते हैं, बहुत बार हम दुविधा में होते हैं, करूं नहीं करूं, ये ठीक है ये गलत है, तो बुद्धि निर्णय करती है, वो कई पक्ष सामने लाकर निर्णय करती है। और फिर जब ये निर्णय हो जाता है, हाँ ये सही है, ये करना चाहिए, तो फिर हम वो कर्म करते हैं। और जब वो कर्म हम कर लेते हैं तो वही कर्म फिर हम बार बार करते हैं, क्योंकि एक बार हमारे विवेक ने उसे सही स्वीकार किया। और जो कर्म बार बार किए जाते हैं वही कर्म हमारे संस्कार बनते हैं, जिन्हें साधारण शब्दों में हम आदत कहते हैं। तो ये देखने में आता है कि कोई भी नया कार्य जब इंसान शुरू करता है तो मन और बुद्धि के बीच में अंतर द्वंद होता है। मन अपनी मान्यताएं, मन की अपनी मान्यताएं हैं, तो मन के अपने विचार चलते हैं और बुद्धि से जो विवेक से हमें समझ है वो कई बार उससे भिन्न होती है। तो इसीलिए वो संघर्ष की स्थिति हो जाती है और हम समझते हैं कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे। मानो कोई शराब पीना शुरू करता, अच्छी या बुरी कोई भी आदत, मानो कोई शराब या सिगरेट पीना शुरू करता है, तो जब वो पहली बार वो लेगा, व्यसन लेगा, तो मानो वो पार्टी में है या दोस्तों के साथ है, तो मन की अपनी भाषा होती है। मन कहेगा कि ये सब दोस्त ले रहे हैं, पार्टी में हैं आज, तो मैं भी लेता हूँ या लेती हूँ। और बुद्धि कहेगी नहीं ये अच्छी आदत नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए। फिर मन अपनी भाषा में कहता है कि एक बार लेने से क्या होता है, बुद्धि अपना तर्क देती है कि ये स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा, स्वास्थ्य खराब होता है इससे। फिर उसके बाद मन फिर अपनी बात कहेगा कि हम धन कमाते हैं, थोड़ा मौज शौक करें उसी के लिए तो कमाते हैं। फिर बुद्धि कहेगी या समाज में, क्योंकि कई बार ऐसी आदतों से समाज में हमारा नाम खराब हो सकता है। लेकिन इनमें से जो पावरफुल होगा, अगर मन बुद्धि पर हावी हो जाता है तो कितने भी समझ है कि ये गलत है, हर एक इंसान को समझ होती है जिसको हम इनर वॉइस कहते हैं, अंदर से विवेक जो कहता है वो हमारी इनर वॉइस है, हर एक को ये समझ होती है कि गलत है या सही है। लेकिन अगर मन हावी होता है तो कितनी भी समझ है व्यक्ति वो काम करेगा। और अगर बुद्धि विवेक शक्तिशाली है तो मन से कितना भी प्रेशर है बाहर का, माना चाहे दोस्त कितना भी कह लें, चाहे एनवायरमेंट कैसा भी है, लेकिन व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कई बार देखने में आता है कि समाज में जो अपराध होते हैं उसका कारण यही होता है कि मन हावी हो जाता है, इंस्टिंक्ट्स के रूप में इंसान वो काम कर जाता है। फिर भले वो कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं ज्ञात होता कि ये गलत है या सही है। तो विवेक की शक्ति हमारी ज्ञान से विकसित होती है, और जितना आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में आता है, बुद्धि दिव्य होती है, शुद्ध होती है, तो ऐसी बुद्धि में संयम रखने की शक्ति एक सामान्य बुद्धि की तुलना में अधिक होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो अध्यात्म का पालन करने वाले या धर्म का पालन करने वाले मनुष्य होते हैं, उनके जीवन में वो संयम नियम का बेहतर पालन कर पाते हैं। फिर तीसरे, संस्कारों की शक्ति। ये दो प्रकार के संस्कार हम अपने जीवन में व्यक्तित्व में देखते हैं। एक तो है हमारे ओरिजिनल संस्कार, जिनको हम अनादि संस्कार कहते हैं, इननेट वैल्यूज कहते हैं, आत्मा इनसे बनी है। और दूसरे हैं हमारे एक्वायर्ड संस्कार, यानी कर्मों से बने हुए संस्कार, क्योंकि हम संसार में कर्म करते हैं, उस कर्मों का प्रभाव भी आत्मा के ऊपर आता है। तो जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं वो सात हैं, आत्मा को सतोगुणी कहते हैं। इसलिए सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, ये सात आत्मा के निजी गुण हैं। जैसे ये शरीर पांच तत्वों से बना है, तो शरीर को चलाने के लिए पांच तत्व ही आवश्यक हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। 70% हमारे शरीर में जल है, तो जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं, और जैसे ही हमारी प्यास बुझ जाती है हम तुरंत पानी छोड़ देते हैं। अगर पानी की जगह हमें कोई ऑयल दे दे या पेट्रोल दे दे तो प्यास बुझने की बजाय वो हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन में पानी है, तो पानी ही शरीर की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड 10 मिनट भी चली जाएगी सांस में तो व्यक्ति मर जाता है। कोरोना के समय बहुत लोगों ने यह अनुभव किया कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो कहने का भाव क्या है कि ये हमारे शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन वही शरीर को सस्टेन करती है। ऐसे ही आत्मा को भी इन्हीं गुणों की आवश्यकता है। हम जो भी प्रयास करते हैं अपने जीवन में, अब ये तो नॉन मटेरियल चीजें हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये कोई मटेरियल तो नहीं है, लेकिन अनुभव हम चाहते हैं। हर इंसान सुखी रहना चाहता है, हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान प्रेम चाहता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, देश का क्यों ना हो। कोई मुस्लिम कहेगा मैं सुखी ना रहूं, या मैं प्रेम से ना रहूं, या कोई ईसाई कहेगा कि हमारे जीवन में दुख हो तो चलेगा, या कोई हमसे नफरत करे तो चलेगा। तो हर एक इंसान की यही आवश्यकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आत्मा का धर्म तो एक ही है, चाहे वो कोई भी जाति भाषा देश धर्म के लोग हैं। देह के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का धर्म सभी का एक है। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि हर एक धर्म तो एक ही बात सिखाते हैं, आपस में प्रेम से रहो, किसी को दुख मत दो, सबको सुख दो। तो क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आत्मा के यही गुण हैं। आज हम जो भी संसार में प्राप्त करने की अनुभव का प्रयास करते हैं, जो कर्म करते हैं, अधिक से अधिक हम प्रगति करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, हम साधन जुटाते हैं, संबंध बनाते हैं, क्या चाहते हैं? हमारा जीवन सुखी हो, हमारे जीवन में हमें प्रेम मिले, हमारे जीवन में शांति हो। कई बार ऐसा होता है कि उस लक्ष्य तक पहुंच गए, भले ही फिर चाहते थे शांति, लेकिन पता चला कि जितनी शांति थी उतनी भी खत्म हो गई। तो बाह्य चीजों में, बाह्य व्यक्तियों में हम ये तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो आत्मा का निजी स्वभाव है। और जब ये ज्ञान हमें होता है, तब हम अपने आप को, इन गुणों को चिंतन से अनुभव करते हैं अपने जीवन में। कहते हैं ना कि रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वो कहाँ ढूंढ रही थी? सारे महल में ढूंढ रही थी। फिर बाद में किसी ने कहा, ये हार तो आपके गले में ही है। तो शांति तो मेरे मन की स्थिति है, मेरा अपना निजी स्वभाव है, और हम शांति को बाहर ढूंढते हैं। शांति के लिए हम कई स्थानों पर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर प्रेम का गुण, कोई व्यक्ति हमें प्रेम देता है तो हमें अच्छा लगता है, और कोई हमसे नफरत करता है या अपमान करता है तो वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता। कोई मजबूरी होगी तो हम चला लेंगे, लेकिन दोबारा हम कभी भी उससे मिलना फिर पसंद नहीं करेंगे। कई बार समाज में देखने में आता है कि जिन परिवारों में बच्चों को प्रेम नहीं मिलता, माता पिता बाकी सब बहुत ही सुख दे देते हैं, लेकिन इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, प्रेम नहीं दे सकते, तो वो क्या होता है, घर छोड़कर चले जाते हैं। जहां उनको प्रेम मिलेगा वहां चले जाएंगे, वो सुखों की परवाह नहीं करते। तो प्रेम चाहिए आत्मा को, ऐसे ही आत्मा को सुख चाहिए। सुख में जीवन सहज लगता है, इंसान सोचता है हमारी आयु और लंबी हो तो अच्छा है, और दुख के चार दिन भी भारी लगते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं दुख दूर करने की, और नहीं दुख कष्ट दूर होते तो यहां तक भी कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे जीवन से तो मुक्ति मिल जाए। और कई लोग सचमुच अपने जीवन को मुक्त भी कर लेते हैं, वो भी हम सब जानते हैं कि समाज में ऐसी घटनाएं भी घटती रहती हैं। तो दुख आत्मा को सहन नहीं होता, दुख उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही प्यूरिटी, पवित्रता, शुद्धता, ये आत्मा का स्वभाव है। हमें स्वच्छता पसंद है, गंदगी हमें पसंद नहीं आती। फिर ऐसे ही जो व्यक्ति चरित्रवान है वो हमें अच्छे लगते हैं, और जो व्यक्ति बदचलन है या चरित्रहीन है या बेईमान है, ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते। भले हम नहीं होंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर उतना ना चल पाए, लेकिन दूसरों में हम क्या पसंद करते हैं कि उनको ऐसा होना चाहिए। तो ये आत्मा की पसंद माना, यही हमारा स्वभाव। ऐसे ही हम शक्ति चाहते हैं, कोई भी कमजोर व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता। तो भगवान से भी प्रार्थना होती है कि हमें इतनी शक्ति देना दाता, या हमें मन की शक्ति देना, तो शक्ति की कामना करते हैं। तो शक्ति हमारा स्वभाव है। तो ये सात गुण हमारे निजी गुण हैं जिनसे आत्मा बनी है। लेकिन जो कर्मों से किए गए संस्कार बनते हैं, उसके कारण हमारे निजी संस्कार दब जाते हैं। तो कभी हम अनुभव करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अब जो हमारे कर्मों से बने हुए संस्कार हैं, वो तीन चार प्रकार से बनते हैं। एक तो परवरिश, जिस परिवेश में हमारी पालना होती है, जिसको कुल के संस्कार कहते हैं। व्यक्ति किस कुल से आता है वो उसके संस्कार होते हैं। तो अगर कोई अच्छे कुल का है तो सब समझते हैं इनके संस्कार अच्छे ही होंगे। दूसरा, शिक्षा से और आसपास के वातावरण का जो प्रभाव होता है, आज मीडिया भी बहुत प्रभावी है तो ये भी मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार भी हम बहुत सारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हमारे सामने आते हैं वो उस बात का प्रमाण देते हैं। कई बच्चे बचपन से जीनियस होते हैं, उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत कम उम्र में वो किसी भी विषय में पारंगत हो जाते हैं, कुछ कलाओं में पारंगत हो जाते हैं ना, डांस करना या गीत गाना या कोई भी ऐसी। अभी जैसे कुछ वर्ष पहले एक बच्चा था कोटिलिय, जिसे गूगल बॉय कहते थे, हो सकता है आप में से भी किसी ने सुना हो, तो वो 5 साल का बच्चा कोई भी प्रश्न का उत्तर दे देता था, वो इतना जीनियस था वो 5 साल की उम्र में ही। तो ये पूर्व जन्मों का अभ्यास होता है आत्मा का। हम देखते हैं परिवार में 2-3 बच्चे हैं लेकिन दोनों तीनों अलग अलग होते हैं। एक स्वभाव से बहुत शांत होगा, स्टूडियस होगा, ओबीडियंट है, लेकिन दूसरा उसके अपोजिट होता है। बाकी सब समान है, माता पिता वही हैं, घर भी वही है, स्कूल में भी एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, टीचर भी वही हैं, और माँ बाप की तो सभी बच्चों के प्रति शुभ भावना होती है, लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग, दोनों की दिशा भी अलग अलग जाती है। तो वो कितना भी प्रयास करते हैं कई बार वो उसमें सफल नहीं हो पाते, और उसका कारण है कि बच्चे पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर के आए हैं। तो 14 साल की उम्र तक वो बहुत प्रबल होते हैं, बाद में जब अपना विवेक विकसित होता है और व्यक्ति ये रियलाइज करता है कि इससे मेरा भविष्य पर बुरा असर हो सकता है, तो कई बार वो परिवर्तन भी कर लेते हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन किए जा सकते हैं, भले मुश्किल है लेकिन परिवर्तन हो सकते हैं। संस्कारों के आधार पर ही हम किसी को पुण्य आत्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं या पापात्मा कहते हैं। हम पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर, महान शरीर नहीं कहते। कर्म तो शरीर से होता है लेकिन हम शरीर पर नहीं कहते, आत्मा पर कहते हैं, क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। इसीलिए महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, हम महात्मा शब्द वो प्रयोग करते हैं। और आत्मा ये संस्कार अपने साथ नेक्स्ट जन्म तक भी ले जाती है, इसको कैरी फॉरवर्ड करती है, और कुछ भी आत्मा के साथ नहीं जाता, लेकिन कर्मों से जो संस्कार बनते हैं वो आत्मा के आगे की डेस्टिनी होती है, उसी अनुसार फिर उसका जन्म होता है। कुछ संस्कार हम विल पावर से भी ओवर पावर करते हैं, यानी कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल न भी हों या हमारा संग का असर भी जीवन में होता है ना, जैसे कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है ऐसे कहा गया। तो बुरा व्यक्ति अच्छे संग में आएगा तो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा व्यक्ति बुरे संग में जाएगा तो वो कब बुरा हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हम कई मिसाल देखते हैं इतिहास में भी, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डाकू उंगुली माल जो था वो बहुत खूंखार डाकू था। महात्मा बुद्ध के समय में किसी राज्य में वो डाकू हुआ और वहां का राजा उस डाकू को नहीं पकड़ पा रहा था, उसकी प्रजा तो उससे बहुत भयभीत होती थी, क्योंकि वो केवल लूटता ही नहीं था, जान से मार के और एक उंगली काट के गले में पहनता था, इसलिए उसका नाम उंगुली माल था। तो जब महात्मा बुद्ध उनके राज्य में आए तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरे राज्य में डाकू है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं उससे मिलूंगा। तो राजा ने उनको सावधानी दी कि मिलना माना वो आपकी जान का भी दुश्मन हो सकता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो उसने कहा मेरे पास लूटने के लिए क्या है, मैं तो एक सन्यासी हूं, और जब मैंने ये सन्यास के वस्त्र धारण किए उसी समय ही मैं जीते जी मर चुका हूं, तो मुझे मरने का भी भय नहीं है इसलिए मैं जाऊंगा। और वो गए वहां पर जहां वो जंगल में रहता था, तो उसने डाकू ने जो है वो उनको नेचुरली जैसे ही उसने देखा कोई आ रहा है उसको आवाज लगा के रोकने के लिए कहा, लेकिन देखा वो रुकते ही नहीं थे। नॉर्मली ऐसे होता था कोई भी इंसान उनका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता था और बस वो मारे उसके पहले ही वो अधमरा होता था, लेकिन देखा उन पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा दौड़ के उसने पकड़ा उनको, कहा रुकते नहीं हो मैं कह रहा हूं। तो भी महात्मा बुद्ध ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बहुत प्यार से उसको देखा। तो ये दृष्टि ये नजर उसके लिए पहली थी, क्योंकि कोई भी डाकू को कोई प्यार से नहीं देखता, सब उससे नफरत करते हैं। तो जब उसने देखा कि इतना प्यार से करुणा से मुझे देख रहे हैं और इनके आंखों में कोई भय नहीं है, तो उसका विचार चला कौन हो सकता है ये, माना मारने के लिए जो हथियार था वो हथियार अपने आप ही नीचे हो गया। तो उसने सुना तो था महात्मा बुद्ध का नाम, तो उसने आगे से ही पूछा कि तुम महात्मा बुद्ध हो, कपड़े भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा तुमने ठीक पहचाना और मैं तुमको लेने आया हूं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा और बहुत प्यार से कहा तो वो खुद ही उनके चरणों में झुक गया, क्योंकि वो डाकू का जीवन तो उसे भी पसंद नहीं था, लेकिन अब वो डाकू बन चुका था तो और कोई उसके अलावा उसके पास रास्ता भी नहीं था। तो जब उसे लगा कि जब खुद महात्मा बुद्ध मुझे लेने आ गए तो फिर अब मुझे ये जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, और वो तैयार हो गया और उनके साथ गया और वो भिक्षु बन गया। तो कितने समय का संग मिला, सिर्फ थोड़े समय के संग ने ऐसे डाकू को भी परिवर्तन कर दिया। इस समय के वर्तमान समय तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी का शासन था और उस समय जयप्रकाश नारायण जी थे, उस समय डाकुओं को समर्पण कराया गया और ये कहा गया कि जो डाकू समर्पण करेंगे उनके जो अपराध उनकी हत्या के जो हैं केस वो माफ कर दिए जाएंगे, उनको ओपन जेल में रखा जाएगा और अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो फिर सरकार उनको एस्टैब्लिश करेगी। तो उनको फिर सुधारने के लिए उनके संस्थाओं को भी बुलाया गया, तो ब्रह्मा कुमारीज को भी बुलाया गया। बहुत जेलों में अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती हैं जो वहां पर अपराधी होते हैं, उनके उनके जीवन में कुछ अच्छी बातें वो सुने ताकि उनके जीवन में उससे कुछ परिवर्तन अगर आ सकता है, तो ऐसे प्रयास किया गया उनके लिए। तो वहां एक डाकू पंचम सिंह थे, सबसे ज्यादा हत्या के केस उन्हीं के ऊपर थे, और जब राजयोग सीखा उन्होंने सभी के लिए वो किया गया प्रबंध किया गया और वो भी उसमें सुनते थे रोज, और सचमुच वो राजयोग से उनको इतना अच्छा अनुभव हुआ कि सबसे अधिक अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा उसमें, और उन्हें सरकार ने उस ओपन जेल से भी बरी कर दिया, यानी उससे वो छूट करके उनको जमीन दी, उनको मकान बना के दिया। लेकिन वो पूरा जीवन उसके बाद फिर उन्होंने राजयोगी जीवन जिया और पूरे भारत में घूम घूम करके उन्होंने राजयोग से कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। तो कहने का भाव संग, संग कितना असर हमारे जीवन में डालता है, इसलिए उसको सत्संग कहते हैं। ज्ञान श्रवण करना उसको सत्संग कहते हैं, माना कुछ समय के लिए हम श्रेष्ठ संग में जाते हैं। तो ये सब हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं और परिवर्तन करने में भी कहीं मददगार होते हैं। तो हमारा कुल व्यक्तित्व, हमारी इननेट क्वालिटीज, हमारा जो निजी स्वभाव है, प्लस कर्म से बना हुआ जो हमारा संस्कार है उसका प्रभाव से वो हमारा निर्माण होता है। आत्मा का स्थान शरीर में यहां भ्रकुटी के मध्य में, मस्तक के मध्य में है, जहां हम तिलक लगाते हैं या बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, यहां हम तिलक देते ही इसको अक्षत कुंकम भी कहते हैं, यानी जो क्षय ना होने वाली शक्ति है वो यहां निवास करती है, जिसका विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है वो यहां निवास करती है आत्मा, जिसको सिख धर्म में कहा भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। आत्मा का स्थान हृदय में या पूरे शरीर में व्यापक है ऐसा नहीं है, आत्मा यहां से पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं ड्राइवर का स्थान गाड़ी में निश्चित होता है, उस स्थान पर बैठ करके ही गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। अगर पीछे की सीट पर बैठकर ड्राइव करेगा तो, क्योंकि ड्राइविंग के सारे साधन वो ड्राइविंग सीट पर हैं। तो हमारे शरीर का भी मेन कंट्रोल रूम मस्तिष्क, वो यहाँ है जहां से आत्मा सारे शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करती है, प्लस ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, मुख, ये सब भी हमारे चेहरे पर हैं। तो आत्मा इस स्थान से पूरे शरीर को सहज कंट्रोल करती है। वैसे साइंटिफिक रूप से देखें तो अगर हम मस्तक के बीच से एक लाइन नीचे खींचें और यहाँ चेहरे से एक लाइन पीछे ले जाएं, तो दोनों लाइन जहाँ मिलती है वो है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच का स्थान, वास्तव में आत्मा का स्थान वहाँ है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन हमारे शरीर में यहाँ होता है। और इसीलिए यहाँ पर ही हम, इस स्थान पर ही हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम तिलक लगाते हैं। आत्मा ड्राइवर की तरह है और शरीर एक कार की तरह है। आत्मा एक डायमंड की तरह है और शरीर उसको उसमें रखने वाले, उसमें जिसमें हम डालते हैं, उस बॉक्स की तरह है। आत्मा मंदिर की मूर्ति की तरह है और शरीर एक मंदिर की तरह है। आत्मा जो है वो रथी है और शरीर रथ है। ये गीता में शब्द प्रयोग किया गया, देहे और देही, रथ और रथी। शरीर देहे है तो आत्मा देही है, अगर शरीर रथ है तो आत्मा रथी है, इस रथ को चलाने वाली है। ऐसे ही आत्मा एक्टर है और शरीर उसका ड्रेस है, जैसे एक्टर ड्रेस पहन करके अपना रोल प्ले करता है। और आत्मा के लिए हम कहेंगे कि इन अंगों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। तो आंखें जैसे खिड़की है, देखती है माना खिड़की है, अगर आंख बंद कर लेंगे तो हम नहीं देख सकेंगे, खुली है तो देख सकते हैं। और जो भी हमारे भाव हैं वो सबसे पहले हमारे चेहरे पर आते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ पर है। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा ही मन का दर्पण है। कोई उदास है, कोई खुश है, हमें तुरंत उसके चेहरे से पता चल जाता है। और हम कह भी देते हैं, क्यों भाई आज बहुत खुश नजर आ रहे हो या आज बहुत उदास लग रहे हो, तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो भले कहे ना लेकिन चेहरे के भाव कोई छुपा नहीं पाता। तो ये भाव प्रकट होते हैं आत्मा के द्वारा, क्योंकि मन से हम विचार करते हैं। जैसे कहा आत्मा हृदय में नहीं रहती। हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे शरीर में जो ब्लड पंप करता है, वो ब्लड को बनाता भी नहीं है और ब्लड को शुद्ध भी नहीं करता। हृदय का संबंध भावनाओं से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हृदय शब्द का इस्तेमाल, दिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ना तो सोचते हैं दिल से और ना ही कोई भावनाएं दिल से अनुभव होती हैं, लेकिन भावनाओं का प्रभाव दिल पर होता है ना। आज हम देखते हैं हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, तो उससे कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बदल जाता कि हार्ट बदलने से वो व्यक्ति ही बदल गया। तो भावनाओं का असर, यानी जो हम मन से सोच रहे हैं और उससे जो हमारे आवेग बनते हैं, उसका असर हमारे दिल पर आता है और हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और हार्ट का कनेक्शन ही ब्लड प्रेशर से है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हमें लगता है हृदय में कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम भावनाओं को हृदय से जोड़ देते हैं, जबकि हृदय कोई भावनाएं नहीं बनाता है या उसका उससे कोई संबंध नहीं है। अब आत्माएं कहां से सृष्टि पर आई हैं, क्योंकि आत्मा के लिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये जग एक मुसाफिर खाना है। तो अगर जग मुसाफिर खाना है तो फिर असली घर कौन सा है, कहां से आए हैं इस दुनिया में। कई बार ये सवाल भी होता है, किसी किसी के मन में ये सवाल भी आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ इस दुनिया में, क्या लक्ष्य है मेरा। तो फिर कहाँ से हम आए हैं, तो परमात्मा शिव जिन्होंने ये राजयोग सिखाया, उनके द्वारा ही ये ज्ञान दिया गया कि इस संसार में तीन लोग हैं। एक तो ये भौतिक जगत है जिसमें विज्ञान की पहुंच है, यानी भौतिक जगत में ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चांद, तारे, ये सब हैं जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, और उसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, यानी सारा खेल जो है वो इस पृथ्वी पर ही चलता है, ये पृथ्वी ही कर्म क्षेत्र है। तो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर समझो अपना पार्ट बजाती है शरीर धारण करके। फिर इसके ऊपर जो लोक है वो सूक्ष्म लोक है, सटल वर्ल्ड, जहां सूक्ष्म शरीर होता है। आत्मा को एक स्थूल काया है, ये हड्डी मांस का शरीर है, और इसी के मिरर इमेज, इसी का आइडेंटिकल सटल बॉडी होती है, जिसे एंजेलिक बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। वो भी आत्मा की मृत्यु के बाद आत्मा उस शरीर के साथ बाहर आती है, तो वो सटल वर्ल्ड उसके लिए है। जितना समय आत्मा शरीर से बाहर रहती है, जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और तीसरा लोक जो है वो है सोल वर्ल्ड, जिसे हम इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम। ये स्व प्रकाशित तत्व है, जिसे ब्रह्म महतत्व कहते हैं। पांच तत्व इस प्रकृति के हैं, छठा तत्व ये ब्रह्म महातत्व है, जहां पर सूर्य चांद तारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। ये सुनहरी लाल प्रकाश, जो सूर्यास्त का रंग होता है, इस तरह का रंग इस लोक का है। तो हम ऐसा रंग तो यहां नहीं बना सकते, लेकिन कुछ प्रयास किया गया, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म महातत्व में स्थित है, ये मूल वतन है आत्मा का। और शांति धाम है, क्योंकि यहां संपूर्ण शांति, इस दुनिया की आवाजें इस लोक तक नहीं पहुंच सकती, ये परलोक है, परे से परे, संसार से परे लोक है। ये मुक्ति धाम है, क्योंकि यहां आत्मा कर्मों के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है। और ये निर्वाण धाम है, यानी वाणी से परे धाम है, परम धाम है, यानी परमात्मा भी यहां निवास करते हैं। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में, जो उसका ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा का असली रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसी रूप में आत्मा परम धाम में रहती है। और इस पृथ्वी पर जब जन्म होता है, तब वो शरीर धारण करती है। शरीर का निर्माण यहीं पृथ्वी पर होता है, और जब शरीर त्यागती है आत्मा, तो यहीं पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाता है। तो शरीर इस भौतिक जगत की हम कहेंगे आवश्यकता है, बाकी परम धाम में आत्मा अपने ही स्वरूप में रहती है। आत्मा के कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं, जैसे आज विज्ञान का युग है, तो हम चाहते हैं कि कोई प्रमाण हो, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती तो संदेह होता है आत्मा है या नहीं है। हाँ, यद्यपि होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी वस्तुओं को सिर्फ हम अनुभव से ही जानते हैं। हवा को हम अनुभव से ही जानते हैं, खुशबू को हम अनुभव से ही जानते हैं, ऐसे ही आत्मा को भी हम अनुभव से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो अपने पूर्व जन्म की बातें बताते, हालांकि ये कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, और जब उसे फॉलो किया जाता है, पैरासाइकोलॉजी एक विज्ञान है जो इस पर अध्ययन करता है, तो उन्होंने पाया कि वो 70% 80% तक सही होती हैं, जब उनको फॉलो अप किया जाता है। यानी पूर्व जन्म में वो जो गांव का नाम बताते हैं, या जो वो अपना परिवार बताते हैं, जो संबंधी बताते हैं, तो वो प्रूव होता है कि हाँ, उस घर से इतने साल पहले वो व्यक्ति गया था, उसकी मृत्यु हुई थी, और इस तरह से। तो ये जो पूर्व जन्म की यादें हैं, वो इस जन्म में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में तो दूसरा मस्तिष्क था, दूसरा शरीर था, और उसे जला दिया गया या दफना दिया गया। तो फिर इस जन्म में वो नए मस्तिष्क में आत्मा पूर्व जन्म को कैसे, व्यक्ति पूर्व जन्म को कैसे याद कर सकता है? तो जरूर दोनों शरीरों में कुछ कॉमन है। तो आत्मा में वो रिकॉर्डिंग्स हैं, और आत्मा कई बार इस नए ब्रेन को यूज करके अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां ताजा कर लेती है, और पूर्व जन्म की बातें वो बताते हैं। तो वो प्रमाण है पूर्व जन्म की आत्मा का अस्तित्व है। कुछ लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, शरीर से बाहर होने का अनुभव, खासकर जो नियर डेथ होते हैं, मृत्यु के नजदीक होते हैं और लगभग मर ही गए एक बार तो दोबारा जिंदा कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि व्यक्ति को रिवाइव कर लेते हैं। तो इसके ऊपर डॉक्टर रेमंड मूडी हैं जो अमेरिका के फिजिशियन, जिनकी इमरजेंसी में, कैजुअलिटी में जिनकी ड्यूटीज रही, और उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स का, क्योंकि मरीज उनको सुनाते थे जब वो रिवाइव हो जाते थे और लौटकर फिर से इस जीवन में आ गए, तो वो कहते थे कि हमने मृत्यु का अनुभव किया, हमने ऐसा अनुभव किया कि हम किसी ब्लैक टनल से गुजरे और फिर हम एक लाइट से मिले, और वो लाइट बहुत ही लविंग थी, बहुत ही केयरिंग थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि इनसे मिल लिया मतलब अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अभी हमें वापस नहीं जाना। लेकिन उन्होंने हमें वापस भेजा, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ है, तो फिर हम ये वापस शरीर में आ गए। लेकिन वहां जाकर के तो हम बिल्कुल मुक्त अनुभव कर रहे थे। तो वो जैसे परमात्मा या सुप्रीम लाइट से वो मिलकर आते हैं और वही उनको फिर वापस भेजती है, ऐसे शरीर के बाहर के, और अब बिल्कुल वो अनुभव करते हैं कि शरीर अलग और मैं अलग हूं। तो इस तरह के अनुभव कई प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हम भी जानते हैं। मेरे एक कलीग थी, डॉक्टर हैं वो, पीडियाट्रिशियन हैं, और उनको ये बहुत स्ट्रांग एक्सपीरियंस हुआ। एक बार उनको सडनली हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वो कुछ काम कर रही थी, छुट्टी का दिन था तो कुछ घर में काम कर रही थी, तो सडनली सीवियर चेस्ट पेन हुआ, जैसे लोगों को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, उसको सीवियर चेस्ट पेन हुआ और उसको लगा कि मैं गिर जाऊंगी। तो पास में ही पलंग था, तो उसने सोचा कि मैं नीचे गिरूं उससे तो अच्छा है मैं अपने आप को पलंग पे डाल देती हूं। तो उसने अपने आप को पलंग पे डाला और तुरंत देखा कि वो शरीर से बाहर है, और जैसे ही उसने अपने आप को पलंग पे डाला, थोड़ा जोर से आवाज की, क्योंकि उनके हस्बैंड फिजिशियन है तो घर में, वो भी घर में थे, छुट्टी का दिन था, तो उसने जोर से आवाज की और फिर जैसे बेहोश हो गई और अपने आप को देखा कि मैं शरीर से बाहर हूं। जब पति ने सुना तो वो पहुंच गए तुरंत और देखा कि ये तो बेहोश हो गई है, क्या हुआ, तो तुरंत नब्स वगैरह देखी तो समझ में आ गया, उनको वो इलाज भी शुरू कर दिया। लेकिन उस पीरियड में उसने देखा कि मैं रूम पे कहीं भी जा सकती हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं, माना ये छत को भी क्रॉस कर सकती हूं, ये बैरियर नहीं है मेरे लिए, तो ठीक है अभी चलना चाहिए यहां से। तो जैसे ही उसने जाने की कोशिश की तो देखा कि कोई पावर स्टॉप कर रही है, कहती नहीं जाना है, इधर ही रहना है। तो उसने सोचा इधर ही रहना है तो मैं देखती हूं, तो फिर देखने की कोशिश की, शीशा था जो लगा हुआ, वहां देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि सटल फॉर्म है तो वो तो दिखाई नहीं देगा। फिर डॉक्टर थी तो अच्छा ये शरीर तो है लेकिन क्या उसमें प्रॉब्लम आ गई है, देखती हूं। तो उसने देखा कि वो शरीर का पूरा एक्सरे कर सकती थी, यानी ऐसे आंखों से हम नहीं देख सकते लेकिन वो सोल रूप में वो पूरा देख सकती थी कि शरीर में कहां क्या ऑर्गन क्या प्रॉब्लम है। तो देखा उसने प्रॉब्लम ये आई है कि हार्ट बीट अचानक बढ़ गई, जो 72 होना चाहिए था वो हार्ट रेट हो रहा था 180-200 बीट कर रहा था वो, और इसीलिए वो इनएफिशिएंट था ब्लड पंप करने के लिए, और यही कारण है कि ब्रेन में ब्लड नहीं गया और वो बेहोश हो गई। इतने समय में ही उनके हस्बैंड ने इंजेक्शंस वगैरह दे करके उनके हार्ट को नॉर्मल स्पीड पे लाया, विद इन 5 मिनट्स ये सब हो गया। और फिर उसने, उसको लगा कि मुझे डायरेक्शन मिला, जाओ अभी शरीर में जाओ, और फिर वो शरीर में घुस गई और उसको होश आ गया। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो खुद डॉक्टर, मतलब उसने खुद किया, और बाद में उसने मेरे साथ शेयर किया और उसने कहा कि मुझे अब विश्वास हुआ कि सचमुच मैं आत्मा हूं, क्योंकि वो जब हमसे मिलते थे और हम इसके बारे में चर्चा करते थे तो कई बार उनको डाउट होता था, लेकिन जब खुद ही इस एक्सपीरियंस से गुजरी तो फिर कहा कि हाँ अब तो मुझे खुद ही अनुभव हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर से बाहर आत्मा निकलकर कैसा अनुभव करती है ये मैंने खुद किया है। तो ये कईयों को ऐसे अनुभव होते हैं। हिप्नोटिक रिग्रेशन जो आजकल साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, ये विधा मरीज को पूर्व स्मृतियों में ले जाती है। अगर वो एडल्ट है तो उसको बचपन की स्मृतियों में क्या रीजंस बने जो अब उसको प्रॉब्लम्स हैं, खासकर लोगों को अनएक्सप्लेन फियर्स होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई कारण नहीं है, या जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए वो पूर्व जन्मों में भी ले जाते हैं। तो ये देखा गया कि पूर्व जन्म में उसका रीजन मिलता है जो वर्तमान में उनको अनुभव हो रहा है, तो वो सिद्ध करता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म से अभी, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने देखा था, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं जो अमेरिका में हैं और उनकी पूरी एक टीम है जो इस पर काम करती है। अमेरिका में एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन विस, जिन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी है। उनका पूरा ट्रीटमेंट उनके साइकियाट्रिस्ट पेशेंट का इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। तो उन्होंने लिखा है सेम सोल सेम बॉडी, नहीं सेम सोल मैनी बॉडीज, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। तो उसमें उन्होंने जो वर्णन किया कि एक व्यक्ति था, वो बॉस्टन में रहता था और कैलिफोर्निया में वो बिजनेस के लिए आया, लेकिन वहां कैलिफोर्निया में उसको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक हुआ तो बाद में, अच्छा ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मैं सुनाने लगी, जो हिप्नोटिक रिग्रेशन का मैं आपको सुनाना चाहती थी वो दूसरा है कि एक बहन को एरोप्लेन जब लैंड होता था तो बहुत डर लगता था, माना लैंडिंग के समय उसका शरीर कांपने लगता था और उसको पसीना आ जाता था, तो वो बहुत घबरा जाती थी और उसको लगता था मैं प्लेन में कभी नहीं बैठ सकती हूँ। जब 3-4 बार ऐसे हो गया, माना उसको लगता था मर ही जाऊंगी, तो फिर उसने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि हम आपको रिग्रेशन में ले जाएंगे। तो जब उसे रिग्रेशन में ले गए तो देखा पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु एरोप्लेन क्रैश में हुई, और वो एरोप्लेन क्रैश था एयर इंडिया का, और उस सन में था जिस सन में जिस प्लेन में ये होमी जहांगीर भाभा, हमारे जो परमाणु वैज्ञानिक थे पहले, वो भी थे, और वो भी उस एरोप्लेन क्रैश में मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने फॉलोअप किया कि ये सही बोल रही है, उसी पीरियड में क्या कोई एरोप्लेन क्रैश हुआ था जब रिग्रेशन में ले गए। तो फिर उसको उसी हिसाब से साइकोथेरेपी दी गई, क्योंकि आपकी मृत्यु ऐसे हुई थी इसलिए आत्मा में वो फियर रिकॉर्डेड है, और जैसे ही प्लेन लैंड करता है, क्योंकि लैंडिंग के समय डेथ हुई, तो जब प्लेन लैंड करता है तो आपका वो फियर इमर्ज हो जाता है और आप को लगता है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। तो जब उसको वो प्रॉपर साइकोथेरेपी के सेशंस दिए गए, काउंसलिंग की गई, तो फिर वो ठीक हो गई। तो इस मेथड को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये आत्मा का प्रमाण है कि पूर्व जन्म में वो कौन था जो इस जन्म में भी है, तो वो आत्मा ही है। शरीर तो बदल जाता है, पुराना शरीर जो था वो तो नष्ट हो गया, तो ये नया शरीर है। तो इस तरह से जब हम आत्मा के ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सामान्यतः हम जानते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में या हिंदू संस्कृति में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन पूरा जीवन हम भूले रहते हैं, हम देह भान में ही रहते हैं, सिर्फ मृत्यु के समय ही हम आत्मा को याद करते हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान हमारे भेदभाव समाप्त करता है। जो भी देह के स्तर पर अगर हमारी दैहिक दृष्टि है तो हम व्यक्ति को जाति से, ये ब्राह्मण है ये शूद्र है, या धर्म से, ये हिंदू है मुस्लिम है या ईसाई है, या फिर उसके देश से, ये अमेरिकन है यूरोपियन है, या भाषा से, ये मराठी है गुजराती है पंजाबी है, जो भी, उनसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभावपूर्ण होने लगता है। लेकिन समानता का व्यवहार, जैसे कहा आत्मा का स्वभाव आत्मा का धर्म तो एक ही है, तो आत्मा के स्वभाव में जब हम स्थित होते हैं तो पहली बात हम अपनी कमजोरियों पर भी विजय पाने लगते हैं, क्योंकि आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है, आत्मा इस शरीर की भी अधिकारी है। तो ये हम अंतर अपने जीवन में महसूस करते हैं, और समाज में इतनी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी काफी हद तक कम होती हैं जब हम आत्मा का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में अपना करके चलते हैं। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए आत्मचिंतन करेंगे। राजयोग में आत्मा के ज्ञान से ही राजयोग का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ये फर्स्ट स्टेप है कि किसको योग लगाना है। तो मैं आत्मा योग लगाती हूँ, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। तो वो आत्मचिंतन हम कैसे करेंगे? आप सभी सीधे होकर, व्यवस्थित होकर के बैठे। और जो भी विचार मैं आपको देती हूँ, आपको मुख से नहीं बोलना है, मन ही मन उसका मनन करना है और अनुभव करना है। अपना ध्यान अपने आसपास के व्यक्तियों से, वातावरण से न्यारा कर लें। और स्मृति में लाएं, मैं एक चेतन शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य में मैं एक ज्योति पुंज हूँ, चमकते हुए सितारे के समान। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने इन कर्मेंद्रियों का आधार लिया है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, अपने कर्तव्य कर्म निभाने के लिए। मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, मुख के द्वारा बोलती हूँ। मस्तिष्क के द्वारा सोचती हूँ। ये शरीर मेरा रथ है, मैं इसकी रथी हूँ। ये शरीर एक वस्त्र की तरह है, मुझ आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। अपने निजी स्वभाव में, मूल स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूँ, इसीलिए शांति मुझे अच्छी लगती है। शांति में ही सुख समाया है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मेरा नीच धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है। जहाँ सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, मेरे पिता परमात्मा भी इस धाम के वासी हैं। ये ब्रह्म महातत्व है, जहां संपूर्ण शांति है, यहां मैं आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त हूं। न्यारी हूं, परम धाम में पवित्रता और शांति शक्ति का अनुभव मैं आत्मा करती हूं। और इस अनुभव को अपने साथ लेते हुए मैं स्वयं को पुनः इस भौतिक संसार में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूं। मैं सारा दिन स्मृति में रखूंगी, मैं आत्मा हूं जो शरीर से कर्म कर रही है, और मेरे संपर्क में आने वालों को भी मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगी। ओम शांति।